हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या 15। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज निद्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनं रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु। वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तक्राधरो न परा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधारा, श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मोकं कुरुतु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 4 जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। श्लोक संख्या 15। इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। शुकदेव गोस्वामी भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, यत् कीर्तनम् यत् स्मरणम् यदीक्षणम् यत् वंदनम् यत् श्रवणम् यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणम् यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। शब्दात् यत् कीर्तनम्, यत् माने जिनका कीर्तनम् यानी महिमागान, यत् स्मरणम् जिनका स्मरण, यद् ईक्षणम् जिनका दर्शन, यत् वंदनम् जिनकी प्रार्थना, यत् श्रवणम् जिनका श्रवण, यत् अर्हणम् जिनका पूजन, लोकस्य सद्यो लोकों का, सद्यो यानी तुरंत ही, विधुनोति विशेष रूप से स्वच्छ करता है कल्मषम् पापों से के प्रभाव को, तस्मय उनको सुभद्र मंगलमयी श्रव से श्रवण किया गया, नमः यानी नमस्कार है, नमः पुनः पुनः नमस्कार है। अनुवाद में उन सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरणन दर्शन वंदनन श्रवण तथा पूजन से पाप करने के सारे पाप फल तुरंत ही दूर जाते हैं। फिर से देखिए अनुवाद में उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत ही धूल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों यानी कलमशों से मुक्त होने के लिए उत्कृष्ट धार्मिक कृतियों का सुझाव दिया गया है। कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, यथा स्मरण करने से, अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाने से, भगवान के समक्ष प्रार्थना करना तथा श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मधुर संगीत के साथ भगवान का यश गान गायन करने से, श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता शास्त्रों का पाठ करने से कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदेह अनुपस्थिति से निराश न हो, भले ही वे अपने को उनकी संगति में ना पा रहे हो। कीर्तन श्रवण स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी सेवा दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होता है। हमें भली भांति ये जान लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तन संपन्न करने वाले को भगवान का साक्षात्कार सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न किए गए स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं गढ़े। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा करके कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है, बशर्त ये कि वह मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप न करे, ना करने के बारे में सावधान रहे। भक्तिमयी सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि कहलाती है। भक्तिमयी सेवा के मार्गदर्शन में यह सबसे बड़ा अपराध है। भक्तिमयी सेवा के मार्ग पर यह सबसे बड़ा अपराध है। कौन सा? नामनो ही बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, यानी भक्तिमयी सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करना ये बहुत बड़ा अपराध है। अतएव ऐसे पाप गर्तों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने की अवश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आवाहन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मुकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मष, यानी कि इस संसार में जितने भी हमने अपराध किए हैं उन समस्त पापों के फलों से मुक्ति सद्यो, सद्यो माना तुरंत ही, इंस्टेंट उसी क्षण, लोकस्य यानी समस्त लोगों के, विधुनोति कलमशम अपराधों को नाश करेगा और अपराधों के फलों को समाप्त कर देगा। और जब अपराध समाप्त हो जाएंगे, अपराध करने की भावना समाप्त हो जाएगी, अपराध के फल समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या होगा, सुभद्र मंगल हो जाएगा, फिर आनंद ही आनंद है, फिर उसके बाद कोई दुख कोई कष्ट कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, यत कीर्तनम, जिसका कीर्तन करने से जीवों के, अब ये जो एक एक शब्द लिखा हुआ ना श्रीमद् भागवतम का, एक एक शब्द अत्यंत ही बहुमूल्य है। एक एक शब्द जो है वो कंठस्थ करने के योग्य है, वह एक एक शब्द हृदय में उतारने के योग्य है। इसलिए कहा गया पिवत भागवतम रसमालयम, कि भागवत है वो रस है और इसको पीना चाहिए, मुहु मुहु उसको बारंबार पीना चाहिए, क्योंकि जितनी दफा भी पिएंगे उसका रस उतना ही उसका स्वाद बढ़ता जाएगा। इसे बताया यहाँ पर यत कीर्तनम, वह जिसके कीर्तन करने से। अभी कीर्तन जब शब्द आता है ना तो हमारे मन में क्या आता है, मृदंग हो, करताल हो, और है ना झांझ हो, और अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो, और हम जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उसको कीर्तन कहा जाता है। ये भी अर्थ सही है, लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन का वास्तविक अर्थ बताते हैं। देखो सबसे पहले यत कीर्तनम बताया गया है ना, हालांकि जब नवधा भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले क्या बताया जाता है, नवधा भक्ति में सबसे पहले बताया जाता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, लेकिन यहाँ पर वह वो कीर्तन और ये जो कीर्तनम शब्द है इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर श्रवणम आएगा लेकिन बाद में आएगा, सबसे पहले कीर्तन बताया गया है यत कीर्तनम। तो कीर्तन का क्या मतलब है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों से मुक्त होने के लिए उत्कृष्ट धार्मिक कृत्यों का सुझाव दिया गया है। क्या करना चाहिए अपने अपराधों को नाश करने के लिए, सबसे पहले यत कीर्तनम। और श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण घोड़ बहुत ही सीक्रेट अर्थ बता रहे, कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हुए, भगवान के यशोगान करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं उसको कीर्तन किया कहा जाता है। कुछ भी यदि ये सोचकर किया जाता है कि हम ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो वो कीर्तन है। ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जाता है, यथा स्मरण करने, जब आप भगवान को याद कर रहे हो, आप बैठे हुए हो और भगवान को अनायास याद कर रहे हो, रास्ते में आप जा रहे हो, किसी पत्थर से टकराते हो और वहां पर भगवान का स्मरण हो जाता है, कोई भी बात होती है, कोई अच्छा या बुरा कुछ भी, कोई भी सीन होता है और भगवान को स्मरण, भगवान का आ जाए, कृष्ण का नाम याद आ जाए, कृष्ण के विषय में कुछ बोला जाए, कृष्ण के विषय में कुछ सुना जाए, वो सब कीर्तन है। यथा स्मरण करने से, अर्चा विग्रह का दर्शन करने से, जब आप भगवान के मंदिर में जाते हो और भगवान का दर्शन करते हो ना, ये भी कीर्तन है। और अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने, जब भगवान के सामने खड़े होकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने, अगर हम शास्त्र को श्रवण कर रहे हैं गीता और भागवतम को, तो वो भी कीर्तन है। मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गान करके तथा श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जाता है। आप कुछ भी कर रहे हो, यदि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, भगवान के लिए है, भगवान के यशो गान करने के लिए है, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए है, तो वो कीर्तन है। लेकिन उसका आंतरिक अभिप्राय क्या होना चाहिए कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, केवल कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए यदि आप मंदिर में आते हो, तो मंदिर में आने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप साधु संग करना चाहते हो। साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन साधु संग क्यों किया जाए? ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। मंदिर में जाते दूसरा कारण होता है हमें प्रसाद खाने को मिलेगा। प्रसाद भी भगवान की कृपा है, लेकिन प्रसाद क्यों खाएंगे? क्योंकि हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो मंदिर में जाकर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि वॉशरूम साफ कर रहे हैं, फर्श साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, या कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं और वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए डायरेक्ट है, तो वो कीर्तन है। लेकिन अगर आप भगवान के नाम का संकीर्तन भी कर रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो, भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, लेकिन यदि हृदय में वो भगवान को प्रसन्न करने का भाव नहीं है, यदि आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, मैं कितना अच्छा करूं कि कृष्ण खुश हो जाए, कीर्तन करते वक्त जब हम संगीत में भगवान के नाम का जप करते हैं, यदि मन में ये आता है कि मैं कितना सुरीला गा रहा हूं, कितने लोग मेरे गाने को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो वो कीर्तन नहीं होता है। वो तो केवल अपने आप की महिमा का बखान करने के लिए। कीर्तन में जब हम डांस करते हैं, उस टाइम पर यदि ये इच्छा है मन में कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो कीर्तन है। लेकिन यदि हम ये सोच रहे हैं कि लोग कितना मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, कि मैं कितना अच्छे से अच्छा लग रहा हूं, तो समझो वो कीर्तन नहीं हो सकता। इतना हमें समझ जाना चाहिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, कि कीर्तन का मतलब होता है केवल भगवान को प्रसन्न करना। तो आप किसी भी कारण से भगवान की सेवा कोई भी तरह की करते हो, यदि हम कथा श्रवण कर रहे हैं और उस समय भी अगर हम भगवान को प्रसन्न करना हमारा केंद्र नहीं है, केवल नॉलेज प्राप्त करने के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं, तो वास्तविक कथा नहीं होता है। जस्ट फॉर ग्लोरीफाई कृष्णा, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, यदि वो भगवान का यशोगान करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि किया जाए, तो वो कीर्तन होता है। कुछ लोग आते हैं मंदिर में और मंदिर में आते हैं, उनका कोई अभिप्राय नहीं होता है कि वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं या भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, केवल अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, है ना, कि यहाँ पर है ना मेरा फ्रेंड है, वो भी इस मंदिर में आता है, मेरी दोस्त है वो इस मंदिर में आती है, तो हम अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन ये कीर्तन में ये बात कीर्तन नहीं है, ये तो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति है। हम वो सहारा ले रहे हैं मंदिर का, लेकिन वो वास्तव में आनंदित स्वयं को करना चाहते हैं। लेकिन यदि मंदिर में जाने का एक ही अभिप्राय है कि मैं इसके द्वारा केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो ही हमारा वास्तविक लाभ पूरा होगा। अब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे, मैं इसी तरह से आपके साथ डील करूंगा। तो यदि हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए अगर मंदिर जाते हैं, तो हमारी वो इच्छा भी पूरी होती है। मंदिर में जाकर भगवान के सामने बहुत बहुत बड़ी लिस्ट रख देते हैं कि भगवान ये मेरी इच्छाएं हैं, ये आपको पूरी करनी है, तो भगवान वो इच्छाएं भी पूरी करते हैं। लेकिन वो वास्तविक कीर्तन, देखो यहाँ पर क्या बताया गया, यत कीर्तनम, जिसका कीर्तन करने से क्या होगा, लोकस्य सत्यो विधुनोति कर्मशम, जीवों के समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा। आप यदि भगवान से कोई पर्टिकुलर वस्तु मांगते हो, तो वो वस्तु यदि आपको मिल भी जाएगी, तो भी आपके समस्त संकट तो दूर नहीं होंगे ना। ये जीवन, ये जो संसार है, पदम पदम यत विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत, हर एक कदम पे हमारे लिए विपदा खड़ी है, हर समय हर स्थान में कष्ट है। तो यदि समस्त कष्टों को दूर करना है, उसका उपाय यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत कीर्तनम, वो जिनका कीर्तन करने से लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, किसी भी तरह से यदि हम भगवान को ग्लोरीफाई, कीर्तन केवल भगवान, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ, कि यहाँ पर किसी भी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया है। जैसे हम शुरू से देखें तो किसी भी श्लोक में, जब से उन्होंने श्री शुक उवाच श्लोक नंबर 12 से उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ किया है, अब वो बताना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं कि एक परीक्षित महाराज ने पूछा था, भूय एव विवत्सामि भगवान आत्मा मायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्य मदीश्वरे। उन्होंने कहा भूय एव विवत्सामि, मैं जानने का इच्छुक हूँ भगवान आत्मा मायया, कि भगवान अपनी निजी शक्ति से यथेदम सृजते विश्वम, इस विश्व का कैसे सृजन करते हैं, और दुर्विभाव्यम अदीश्वर, ये सब जो बहुत बड़े बड़े देवी देवता हैं, उनको भी ये बातें समझ में नहीं आती हैं, मैं उसी भगवान के विषय में जानना चाहता हूँ जो इस संसार का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, किस तरह से अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। तो उस क्वेश्चन के उत्तर में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तितयाय देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्षवर्त। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं, सद उद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देना। वो तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, वे प्रत्येक शरीर के भीतर भी निवास करते हैं, अंतर भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने, वो बाहर भी हैं, अंदर भी हैं समस्त जीवों के, और अचिंत्य हैं, वो उनको समझा नहीं जा सकता है, परम पूर्ण हैं और उनकी गतिविधियां अचिंत्य हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि वो जो समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए तीन गुणों को ग्रहण करते हैं और जीवों के अंदर और बाहर निवास करते हैं। भूयो नमः सद् वृजिनेच्छिदेस्ता असंभवाय किल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनसारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृक्ष्यदाशु। कि वो भगवान भूयो नमः सद्विजिनिच्छिदेस्ता, कि अभक्त जो होते हैं उनकी नास्तिक मनोवृत्ति को दूर करने वाले और भक्तों के समस्त संकटों से उनको मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें में विशिष्ट उन्हें जो विशिष्ट प्रदान फल प्रदान करते हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। और आगे उन्होंने कहा, नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मोह कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वदामनी ब्रह्मणीर सहित। के शुद्ध यदुवंशियों के जो संगी हैं, जो सदैव द्वंद्व से दूर रहते हैं, विदूर काष्ठाय मोह कुयोगी नाम निरस्त, जो अभक्त हैं उनको विध्वंस कर देते हैं, उनको हमेशा संकट में डालते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको संकट से उभारते हैं। लेकिन उन सब कार्यों के लिए भौतिक जगत में होते हुए भी स्वधामनी ब्रह्मणी रौस्यते, अपने धाम में सदैव रहते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और आज बता रहे, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षण, वो भगवान जिसका कीर्तन करने से, जिसको स्मरण करने से, जिसका दर्शन करने से, जिसका वंदन करने से, जिसको श्रवण करने से, जिसकी पूजा करने से, लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम, इस पूरे संसार के सारे दुखों का समाधान हो जाता है, अपराधों के फलों का नाश हो जाता है। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, ऐसे भगवान को जो सुभद्र प्रदान करने वाले हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो पूरे श्लोकों में आगे भी इसी तरह की स्तुति है, लेकिन कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं बताया गया है। ये तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि केवल वही भगवान श्री कृष्ण ही कीर्तन करने के योग्य है, और किसी का कीर्तन किया ही नहीं जाता, क्योंकि और किसी का कीर्तन कोई शुद्ध भक्त कर ही नहीं सकता। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नारद मुनि वेद व्यास जी को बताते हैं पहले स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 में, न यत् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमोषन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। कि न यत् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, वो जो शब्द चाहे कितने ही अलंकृत हो, चाहे कितने ही अच्छे तरीके से बताए गए हो, लेकिन यदि उसमें भगवान श्री कृष्ण हरेर यशो, भगवान श्री कृष्ण के यश की महिमा नहीं बताई गई है, भगवान के विषय में नहीं है, फिर वो चाहे कितने ही अच्छे ढंग से बोले गए हो, जगत पवित्रम प्रगृणीत कर ही चेत, लेकिन वो शब्द सिर्फ जो भगवान जो कि संपूर्ण जगत के वायुमंडल को पवित्र करने वाले हैं, उन भगवान के यश को नहीं बता रहे हैं, फिर चाहे वो कितने ही सुंदर और अलंकृत क्यों न हो, तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा, तो वो तो जो वायसम कहते हैं कौवों के, वायसम तीर्थम, ये तो कौवों का तीर्थ है, यानी कि वो कौवे जो हर जगह कचरे के अंदर ही मुंह मारते हैं, तो ऐसे कौवे ही ऐसे सुंदर ढंग से बताए हुए शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो शब्द चाहे कितने ही सुंदर ढंग से बताए गए हों, लेकिन यदि वो भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं तो वो कचरा ही है, फेंकने योग्य है, गंदगी है, और वो सिर्फ कौवों को ही आकर्षित करते हैं। न यत्र हंसा निरमंत्यु शक्षया, मतलब जो हंस जो दिव्य धाम के वासी होते हैं, ऐसे भगवान के जो शुद्ध पार्षद हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो उन शब्दों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जो कि भले कितने ही सुंदर तरीके से बताएगा लेकिन भगवान की प्रशंसा नहीं है, भगवान श्री हरि के बारे में नहीं है, तो उनकी ओर तो शुद्ध भक्त देखते भी नहीं है, वो तो उनको गंदगी लगते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यदि कीर्तन करना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का ही किया जाता है, कीर्तन केवल कृष्ण का किया जा सकता है। बाकी ग्लोरीफाई तो हम बहुत सारे अन्य जीवों को भी कर सकते हैं, जैसे भक्तों को भी ग्लोरीफाई किया जाता है, उनकी भी महिमा का वर्णन किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वो इस स्थान पर पहुंचे हैं, जैसे गुरु महाराज, वो इसलिए उनको प्रशंसा किया जाता है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं। कभी कभी देवताओं को ग्लोरीफाई किया जाता है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोरिफिकेशन इज कृष्णा। वास्तव में जो कीर्तन करने के योग्य है, वास्तविक जो कीर्तन किया जाता है वो केवल कृष्ण के लिए किया जाता है। बाकी सबको प्रशंसा कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई, यत कीर्तनम, जिसका कीर्तन करने से लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम, जीवों के समस्त दुखों का नाश होगा, वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। और जो दूसरे किसी की प्रशंसा कर रहा है या केवल अपनी ही प्रशंसा कराना चाहता है, देन हाउ कैन वी ग्लोरीफाई कृष्ण when we wants to glorify ourselves? अगर हम खुद को खुद की प्रशंसा चाहते हैं कि मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए, या कोई लोग कथा भी करेंगे तो भी है ना अपने बारे में बताएंगे, आधे से ज्यादा मैं यहाँ गया, मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा बताया गया, ये सब मेरी इतनी सारी है ना कथाओं को सुनते हैं, मुझे आदर देते, मैंने 35 ईयर से मैंने प्रचार करना शुरू किया, इतना किया, आप कथा बता रहे हो, भगवान के बारे में बताओ ना, भगवान को कैसे प्यार करें हम? तो जो अपने ही विषय में बताना, उसके हृदय में एक ही इच्छा है कि लोग मेरी महानता को समझें, मैं कितना महान हूं, तो वो कभी भी भगवान को सही तरह से भगवान का कीर्तन नहीं कर रहा है। वास्तव में भगवान का कीर्तन किया जाता है भगवान श्री कृष्ण के को उन उत्तम शब्दों के द्वारा बखान किया जाए कि लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से हमें ये याद रखना है कि हम मंदिर में जाए ना तो हृदय में केवल एक ही भाव हो कि हम मंदिर में भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। जब कीर्तन करें ना तो भले हमारा स्वर इतना मीठा नहीं हो, भले हमारा संगीत इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन जब हम मुंह से कुछ बोले ना तो लगे कि भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। कथा जब कर रहे हैं तो भले हमें इतना अच्छे तरीके से शास्त्र के श्लोकों डिस्क्राइब करना नहीं आता हो, लेकिन फिर भी इसमें ये तो हमें बताना है कि जो कुछ भी है वो कृष्ण कृष्ण ही है, हमारा संबंध केवल कृष्ण के साथ है, हमें केवल कृष्ण के साथ प्रेम करना सीखना है, इसीलिए हमें कथा श्रवण करनी है, इसीलिए हम भगवान के इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में कोई भी कार्य तस्मय सुभद्र मंगलमय तभी हो सकता है जब वो उन भगवान, यहाँ पर लिखा यत कीर्तन, उन भगवान से रिलेटेड हो। यदि आप सुबह को मंगल आरती के लिए उठते हो और केवल यही सोचकर कि लोग सोचेंगे कि देखो ये कितनी अच्छी है डेली मंगल आरती में आती है, तो उस समय आपकी वो मंगल आरती नहीं हो जाती है, वो अमंगल आरती हो जाती है। क्योंकि वास्तविक तो आपका भाव ये होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रही हूँ, ना कि लोग मेरी प्रशंसा करें। तो कोई भी कार्य यदि हम भगवान के लिए कर रहे हैं जस्ट फॉर ग्लोरिफाई द कृष्ण, वो है कीर्तन। यहाँ जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले फिर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे भगवान के दर्शन कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहे हो, शास्त्र को सुन रहे हो या शास्त्र को बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, यदि वो भगवान के लिए है तो फिर वो कीर्तन है। और जब आप कीर्तन करते हो उस समय क्या होता है, दूसरा शब्द लिखा यत् स्मरणम्, तो उन्हीं का स्मरण होता है आपको, आप उन्हीं भगवान को स्मरण कर रहे हो। जब आप कोई भी भगवान के लिए कार्य कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन उसी भगवान के अंदर होगा। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे उत्तम श्लोक हैं जो डायरेक्ट से भगवान को जाते हैं, जैसे गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति की थी, जैसे जब ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, और बहुत बहुत सालों तक युद्ध चल रहा था, 100 साल तक युद्ध चलता रहा, लेकिन ना ही गजेंद्र हार रहा था और ना ही मगरमच्छ हार रहा था। तो इतने सारे समय तक युद्ध करने के बाद गजेंद्र क्योंकि धरती का प्राणी था तो वो थक गया था, बहुत हार गया था, और उसने अपने बहुत सारे प्रयास किए थे भगवान की कृपा से। पहले तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, उनके पत्नी ने, उनके बच्चों ने उनको छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन फिर जब देखा कि ये तो मगरमच्छ इसको छोड़ ही नहीं रहा है, तो फिर सब उसका एक एक करके साथ छोड़ गए। जब उन्होंने देखा गजेंद्र ने कि कोई भी नहीं है आज साथ देने वाला, तो उन्होंने उस भगवान को याद किया, फिर बहुत प्रयास किया, भगवान की कृपा से उन्होंने पिछले जन्म में जो स्तुति याद की थी वही स्तुति आज उन्हें याद हो गई, और तकरीबन 55 श्लोकों में उन्होंने भगवान की स्तुति की। अत्यंत सुंदर स्तुति गजेंद्र जो इंद्रद्युम्न राजा थे वो भगवान की कर रहे थे, और इस स्तुति में उन्होंने कहीं भी नहीं बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा हूँ, वो कंटिन्यूस यही बोल रहे थे कि मैं उन भगवान को, उन परम पुरुष को, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आराधना कर रहा हूँ, उनको प्रार्थना कर रहा हूँ जो कि संपूर्ण देवी देवताओं के भी स्वामी हैं। और जब उन्होंने सारी स्तुति कर ली तब सोच रहे थे सारे कि कौन जाए, देवी देवता देख रहे थे एक दूसरे की तरफ, लेकिन वो सब जानते थे कि हम वो नहीं हैं, हम वो पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान जो कि संपूर्ण जीवों की रक्षा करने के लिए जाते हैं, वो भगवान हम नहीं है। तो सब लोग कोई नहीं उठा उनकी रक्षा करने के लिए, कौन आया, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए आए। तो वास्तव में यहाँ पर जो स्तुति कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी वो भी कह रहे हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम। वो भगवान जिनके स्मरण करने से, जिनका कीर्तन करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनकी वंदना करने से जीवों का वास्तविक कल्याण होता है। बाकी किसी की भी आप वंदना कर दो, किसी को भी आप कीर्तन करो, किसी का भी यदि दर्शन करो, तो आपके कष्ट जो है वो बरकरार रहेंगे, आपको उस वंदना से कुछ फैसिलिटी मिलेंगी। उस किसी की भी भक्ति करने से कुछ फैसिलिटीज मिल जाना ये अलग बात है, लेकिन लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम, जीवों के समस्त कष्टों का निवारण यदि होगा तो उसी भगवान के कीर्तन करने से। और जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे तो अवश्य भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे कि कृष्ण हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद यद ईक्षण, ईक्षण का मतलब क्या होता है, साक्षात दर्शन, दर्शन, और एक शब्द आता है पश्यन, पश्यन का मतलब होता है देखना, है ना, लेकिन ईक्षणम और पश्यन इन दोनों में बहुत अंतर है। पश्यन का मतलब होता है आप किसी भी जीव को, किसी भी वस्तु को आप देखते हो उसको बोलते हैं पश्यन, कि आपने बस उसको देखा, लेकिन ईक्षणम का मतलब क्या है कि आप उसके दर्शन करो और वो आपको दर्शन दे। यानी कि हम जब भगवान की विग्रह के सामने जाते हैं ना, तो हम केवल भगवान को देख कर नहीं आते कि भाई मैं भगवान को देख लिया, देख कर आ गए। देख कर तो जैसे आप किसी शोरूम में जाओगे, जितनी गाड़ियां खड़ी होंगी आप उनको देखोगे, लेकिन वो तो आपको नहीं देखेंगे ना। लेकिन यहाँ पर पश्यन शब्द नहीं बताया गया, यहाँ पर क्या बताया गया, ईक्षण। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को चाहिए कि वे भगवान के सदेह अनुपस्थिति से निराश ना हो, भले ही वे अपने को उनकी संगति में ना पा रहे हो, कीर्तन श्रवण स्मरण आदि, या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक को की भी। भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान करती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन श्रवण स्मरण आदि, या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भी भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करने, उनके सानिध्य की वांछित फल प्रदान कर सकती है। यानी कि अगर हम इसमें से कुछ भी नवदा भक्ति में से संपूर्ण विधि से करते हैं, जैसे परीक्षित महाराज केवल श्रवण करने से भगवत प्राप्ति कर ले, सुखदेव गोस्वामी केवल भगवान की कथाओं को कहकर कीर्तन करने से भगवान को प्राप्त कर दिया, और है ना इसी तरह से हनुमान जी ने केवल सेवा भाव से भगवान को प्रसन्न कर दिया, अर्जुन ने केवल सखा बनकर भगवान को अपना सखा मानकर अपना सुहृद मानकर अपने आप का कल्याण कर दिया, यशोदा मैया केवल मातृभाव से भगवान की सेवा करती रही और इस तरह से उन्होंने भगवान। तो कोई भी विधि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सख्यम आत्म, तो जो कुछ भी है उसमें से केवल एक भी किया जाए या सभी जो है वो थोड़े थोड़े किए जाए, इनमें से कुछ भी किया जाए, उनकी भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान करती है। हमें ऐसा नहीं, ईक्षणम का मतलब ये नहीं है कि बस हमने भगवान को देख लिया या हम बस उनको देख के आ गए, नहीं। दर्शन करना और देखना दो अलग अलग बातें होती हैं। जैसे हम एक बहुत ही सुंदर कथा है, वृंदावन में बांकी बिहारी का मंदिर है, वहां पर सूरदास जी रोजाना जाते हैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी को किसी ने कहा बाबा इतना तो यहाँ पर भीड़ है, आप इधर से रोज जाते हो आपको तो दिखता भी नहीं है, आप इधर से जाओगे खामखा में रास्ते में किसी से टक्कर लग जाएगी, गिर जाओगे, सरमाथा फूट जाएगा, आप बाहर ही बैठ जाओ भगवान को याद करो, वैसे भी तो आपको दिखेगा नहीं। तब वो कहते हैं मैं यहाँ पर ये भगवान को देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि भगवान को ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि देखो मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया था। अब मेरे नेत्र नहीं है उसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी भगवान के दर्शन करने के लिए आया। मतलब जब आप भगवान के पास जाते हो तो भगवान भी आपके दर्शन कर रहे होते हैं। जब आप ये सोच कर जाते हो कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ, तो उस समय भगवान भी आपके दर्शन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भक्तों को, कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई आप इतना समय हो गया या आप मंदिर में नहीं आते हो, क्यों मंदिर में नहीं आ रहे हो, उसका कारण क्या है? तो वो कहते हैं कोई ना कोई है ना वो कारण बताते हैं, आर्ग्यूज देते हैं। कभी कभी जब किसी की भक्ति छूट जाती है ना, तो वो अलग अलग आर्ग्यूज देते हैं। वो बोलते हैं मंदिर में भक्त जो है वो अच्छे नहीं है, या क्लासेस में ना वो बात नहीं है, जो मजा नहीं आता है मुझे, कीर्तन नहीं अच्छा हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ वो बता देते हैं। तो वास्तव में ये सब का एक ही कारण है, ये सब जो है ना वो बता रहे होते हैं वो तो केवल एक ही आर्ग्यू है, लेकिन वास्तविक कारण एक ही है कि हम जब जा रहे थे ना मंदिर में तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपनी प्रसन्नता के लिए जा रहे थे। जहां पर देखा कि अब मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है तो फिर हम जाना छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, द डिवोटीज बिजनेस इज ओनली दिस टू ग्लोरीफाई कृष्ण, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर भगवान हमें खुद ही अवसर देता है। जहां पर मिस्टेक्स होती हैं, जहां पर कुछ अच्छा नहीं होता है, तो भगवान खुद ब खुद योजना बनाते हैं, देखते हैं भगवान की ये शुद्ध वक्त है और वो प्रयास कर रहा है, तो भगवान स्वयं उसको अवसर देते हैं कि ठीक है तुम सिंसियर हो तो तुम्हारे द्वारा ये संपन्न सेवा की जाए। भगवान की सेवा है, भगवान का प्रचार है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की कथा है, भगवान को ही करनी है, भगवान ही करेंगे, लेकिन वो आपकी सिंसियरिटी को देखकर, आपकी शुद्ध भाव को देखकर, आपकी सेवा और साधना की इच्छा को देखकर भगवान श्रेय देते हैं आपको। भगवान केवल श्रेय देते हैं। ये जो युद्ध हो रहा था ना कुरुक्षेत्र में, वो युद्ध अभी स्टार्ट नहीं हुआ था जब भगवान ने भगवद गीता बताई थी, और उसी में 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया कि प्रतीक जितने भी योद्धा हैं वो सारे के सारे भीष्म द्रोणम च जयद्रथम त, वो सब भगवान के मुख में जा रहे थे और कुछ तो भगवान के मुख में चूर्ण बन रहे थे। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, देखो अर्जुन युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इन सबको पहले से ही मार दिया, ये मेरे द्वारा पहले से ही मरे हुए, सिर्फ संसार के इतिहास में ये बात लिखवानी है मुझे कि अर्जुन ने इन्हें मारा, इसलिए निमित्त मात्रम भाव सव्य साचिन, ऐसे साची तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र बनना है। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया था, पृथ्वी ते आचरत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मेरा नाम, ये तो मेरा नाम प्रचार होना एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है कि हर एक जितने भी नगर और गांव है वहां पर मेरा नाम का प्रचार होगा होगा और होकर रहेगा। ये तो श्रील प्रभुपाद जी को मैंने श्रेय दिया है, ये तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान श्रेय देते। हमें अपनी ओर से कुछ करना नहीं है, निमित्त बनना है, हमें केवल अपनी सेवा और साधना को देखना है कि हम कहाँ तक सही तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी सिंसियरिटी है, कितना सेवा भाव है, बाकी तो भगवान स्वयं ही कराते हैं। ये भगवान का वादा है कि जो मेरे लिए कार्य करने का प्रयास करेगा मैं अवश्य उसकी सहायता करूंगा। भगवान ने तो कह दिया आप कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चि तुम इच्छति तस्य तस्या चला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम, मैं स्वयं उसको प्रोवाइड करूंगा जैसी जैसी वो श्रद्धा। तो यदि हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे तो भगवान अवश्य हमें अवसर देंगे, लेकिन यदि हम अपनी इंद्र तृप्ति चाहेंगे तो फिर भगवान दे देंगे। भगवान ने कह दिया यो जो जिस भाव से आएगा ये यथा माम प्रबद्यन्ते तंस्तथैव भजामि अहम्। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, चाहे दुखी होकर आओ, चाहे धन की कामना से आओ, चाहे जिज्ञासु बनकर आओ, ज्ञानी बनकर आओ, मेरे पास आओगे तो तुम पाओगे भी, जिस जिस भाव से आया है आज तक कोई उसे पाओगा। लेकिन ये वास्तव में कीर्तन नहीं है, ये वास्तव में स्मरण नहीं है, वास्तव में ये भक्ति नहीं है। भक्ति का क्या मतलब होता है? अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनार्थम, कि बाकी सारी कामनाएं शून्य हो जाए, ज्ञान कर्म आदि की जितनी भी भाव है हृदय से, जितनी भी इच्छाएं वो समाप्त हो जाए। अनुकूलस्य कृष्णानु, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो है शीलनम भक्तिरुत्तम। तो यदि क्षणम का मतलब होता है कि भगवान का साक्षात्कार करना, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान भी हमें दर्शन देने के लिए विग्रह में उपस्थित होते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है वहां भगवान विद्यमान होते हैं, जब हम भगवान की शुद्ध हृदय से सेवा करते हैं। इसलिए सेवा में शुद्धता होनी चाहिए, सेवा में जब हम भगवान की सेवा करें तो प्योरिटी होनी चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर हमारी जितनी भी औकात होती है, हमारे पास जितना भी होता है उस हिसाब से हम करते हैं, लेकिन जब भगवान के दर्शन करें तो ये न देखें कि इन वस्त्रों और आभूषणों ने भगवान की सुंदरता को बढ़ा दिया है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर हैं, कि भगवान ने हमारी सेवा को कितना सुंदरता से स्वीकार किया है। भगवान तो कभी किसी मंदिर में हम जाएं तो भले ही वहां पर कितने कीमती वस्त्र आभूषण नहीं पहने हुए हो, लेकिन उन्होंने जो प्रेम से श्रृंगार किया है उसको भगवान स्वीकार कर रहे हैं, और भगवान इस प्रेममयी सेवा से कितना आनंदित हो रहे हैं। तो हमें भगवान को देखकर हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। वस्त्र और आभूषणों की इतनी औकात नहीं है कि वो भगवान की सुंदरता को इंक्रीज कर सके, बल्कि भगवान इतने सुंदर हैं कि वो फूल भी लगाते हैं, ऐसे कुछ मोर पंख लगा दिया, भगवान को फूल से डेकोरेट कर दिया, भगवान की कोई सिंपल से श्रृंगार भी कर दिया, तो भी भगवान कितने सुंदर हैं, वो सदैव सुंदर ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार निरपराध कीर्तन संपन्न करने से भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमंजना सुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदये विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्यकु प्रेमंजना सुरिता भक्ति विलोचनेन। ये भगवान का दर्शन इन भौतिक अंकों से नहीं होगा, जब प्रेम का अंजन हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगाएंगे ना, उस उन हृदय के नेत्रों से, जब हृदय का नेत्र कब, जब निरपराध कीर्तन करेंगे, मतलब भगवान का प्रेम से कोई भी सेवा करेंगे तो हृदय के जो नेत्र हैं उन पर जब प्रेम का अंजन लगेगा तब हम भगवान को उन नेत्रों से दर्शन करेंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस प्रकार निरपराध कीर्तन संपन्न करने वाले को भगवान का साकार आत्मिक सानिध्य प्राप्त होता है। उसके बाद है यत वंदनम, यत वंदनम। वंदनम के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न किए गए स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त होता है। कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत हम मनमाने तरीके से भगवान का वंदन नहीं कर सकते। वंदन का मतलब होता है प्रार्थना करना, कि किस तरह से भगवान की प्रार्थना की जाए, तो वो मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। श्री प्रभु मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति के स्वरूपों का को मनमाना नहीं घड़े। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान की स्वरूप की पूजा कर सकता है, या किसी मस्जिद में या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्तिमय प्रार्थना कर सकता है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने साकार और निराकार दोनों की प्रार्थना को बताया कि मंदिर में जाकर जब हम भगवान की साकार विग्रह की पूजा करते हैं, जिसको यद अर्हणम के बाद में बताया गया है, अर्हणम मतलब पूजा करना, तो जो वैदिक आदेशानुसार जिस तरह से हम विग्रह को स्थापित करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस भगवान वो साक्षात भगवान है, और उसकी यदि हम पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, या फिर जिस तरह से गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की थी, यद वंदनम, किस तरह से स्तुति की थी, शास्त्र के अनुसार, जैसे कि शास्त्रों में भगवान की उन्होंने, गजेंद्र जो कि पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, उन्होंने अपने ऋषियों से, अपने गुरुजनों से जो स्तुति सीखी थी वही स्तुति उन्होंने की थी। उसी तरह से भगवान, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, भले आप किसी तरह से भी पूजा कर रहे हो, जैसे जो मुस्लिम है वो निराकार भक्ति करते हैं, लेकिन वो पूजा किसकी हो रही है, जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे, जिनके कीर्तन करने से लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, वो परम पुरुष भगवान जिसने पूरे संसार को उत्पन्न किया है, जो सृजन करता है, संहार करता है, पालन करता है, उन्हीं का कीर्तन करने से ही हमारे समस्त कलमश दूर हो सकते हैं। तो चाहे वो बच्चा जो कि नहीं पता, उसको पैदा होते हुए उसको ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कि ये जो है तुम्हारा बाप है उसका नाम कृष्ण है, नहीं, वो है कोई जिसके तुम संतान हो वो है कोई पूर्ण पुरुषोत्तम। तो जैसे मुस्लिम हैं, उनको भगवान का भले स्वरूप नहीं पता, लेकिन जब वो आराधना करते हैं तो वो उसी भगवान के करते हैं जिसने संसार के प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न किया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसी तरह से बता रहे हैं कि वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है, किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है, बशर्त ये कि वह मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर प्राप्त करने के बारे में सावधान रहे। यदि हम ये सोचकर भगवान के पास जाते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो मैंने काल पाप किया है और पूरा हफ्ता अपराध करके संडे के संडे चर्च में जाकर भगवान से क्षमा मांगेंगे और वहां से सोचेंगे कि भाई ठीक है, पिछला हिसाब किताब खत्म हो गया, अभी नया, तो ये तो क्या है, ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ा अपराध है, नाम अपराध है, जिसको कहते हैं नामनो ही बलाद यस्य ही पाप बुद्ध है, कि नाम के बल पर अपराध करना। लेकिन यदि शुद्ध हृदय से भगवान के पास जाते हैं कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए अब जिएंगे, अब भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे और भगवान की प्रसन्नता करने के लिए अपराधों को छोड़ देता है, तो फिर वो भगवान भले ही वो फर्स्ट क्लास का, जैसे अभी तक निर्विशेष का ही उपासक है, उसको भगवान का अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, वासुदेव सर्वमिति नहीं पता उसको, लेकिन भगवान है कोई ना कोई, जिसका नाम अल्लाह हो या कुछ भी हो, लेकिन वो भगवान है, उसकी मैं पूजा करता हूँ, ये सोचकर यदि वो वंदन करता है तो क्या होगा, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मष, तो हमारे समस्त अपराधों का नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद बताया यत् श्रवणम्, जिसके केवल श्रवण मात्र से, वास्तव में जो कुछ भी हम करेंगे, चाहे कीर्तन करेंगे या स्मरण करेंगे, दर्शन करेंगे या वंदन करेंगे, पूजा इत्यादि जो भी करेंगे ना, वो वास्तव में तब तक संपन्न नहीं की जा सकती है जब तक सही मायनों में श्रवण नहीं किया जाता है। जब हम श्रवण करेंगे तभी ही भगवान का कीर्तन कर सकेंगे, तभी ही स्मरण कर सकेंगे, तभी ही विग्रह में भगवान का दर्शन होगा, तभी तो भगवान की स्तुतियां करेंगे, तभी तो वंदन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। इसलिए वो साक्षात श्रवण वास्तव में केवल भगवान के लिए किया जाना चाहिए। ये जो कान बने ना, किसी के विषय में श्रवण करने के लिए नहीं है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, साहानि चन महत् छिद्रम सा मोहो सच विभ्रमः, यन मुहूर्तम क्षणो वापि वासुदेवन न चिंतयम्। वो क्षण, एक क्षण भी आपका जाया हो रहा है, जब सा हानि, वो बहुत बड़ी हानि आपकी, जब आपने भगवान को याद नहीं किया। सा मोहो सच विभ्रमः, भगवान की विस्मृति हो गई और कुछ और अच्छा लगने लगा, किसी भौतिक वस्तु के अंदर आपको प्रेम आ गया या अपने शरीर के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया, भगवान से प्रेम हट गया थोड़ी देर के लिए। सबसे बड़ा मोह है ये कि अपने आप को कुछ समझो या किसी वस्तु को अपना समझो। तो ये कहते हैं यन मुहूर्तम, एक छोटा सा मुहूर्त, एक क्षण भी यदि ऐसा गुजरता है जब वासुदेवम न चिंतयम्, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन नहीं होता है, उनको स्मरण नहीं होता है, संसार में सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि समय से बढ़कर कुछ नहीं है और वो समय आपका जाया हो रहा है जब भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है। इसलिए श्रवण करना है ना, तो केवल भगवान के विषय में, और यद अर्हणम, यदर्हणम मतलब उसी भगवान की पूजा जब हम करते हैं तो क्या होता है, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्। वास्तव में हमारे सारे दुखों का कारण हमारे अपराधों का फल है, और ये अपराधों का फल तब समाप्त हो जाता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की का कीर्तन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनके विषय में श्रवण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे सारे अपराधों का फल नाश हो जाता है। अपराध के फलों के कारण हमें कष्ट मिलते हैं तो हमारे संकट नाश हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है। तस्मय सुभद्र, इसी से हमारा मंगल संभव है। हमें आनंदित जीव जन्म जन्मांतर से सुभद्र को इच्छा करता है कि मेरा मंगल होना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए। तो ये केवल भगवान की भक्ति से ही संभव है। इसलिए वे कहते हैं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, मैं उसी भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनके कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनके दर्शन से, वंदन से, श्रवण से तथा पूजा से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत ही धुल जाते हैं और वो मंगलमय है और उनके कारण हमारा जीवन जो है वो मंगलमय होता है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।